ओम शांति। चलो अभी आवाज आ गई। बाबा ने हम सबको अंतर्मुखी यान दिया है, अंतरिक्ष यान और अंतर्मुखी यान। पिछली मुरली याद होगी संडे की, अंतर्मुखी यान से सेकेंड में इस साकार वतन से पार अव्यक्त वतन में पहुंच सकते हैं। सबके पास ये यान है ना, नीचे ही जा रहा है। इसको टाइट कर दो भाई जी, इसको टाइट करो, ये नीचे जा रहा है। ऑटोमेटिक डाउन हो रहा है। बस बस ठीक ठीक ओके। अंतरिक्ष यान से स्पेस में चले जाते हैं और हम सब बाबा के बच्चे अंतर्मुक्ता के यान से अंतर्वाहक शरीर से। कौन सा यान है हम सबके पास? मन, अंतर मन वाहन। मन ऐसा एक सुंदर वाहन है, अगर हमारे कंट्रोल में है तो हम बहुत सहज इस साकार वतन से उड़कर अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा कर सकते हैं। तो सभी अपने अपने इस अंतर्मुखी यान को फुल पेट्रोल देते हो? अच्छा पेट्रोल है सबके पास यान में? विमान में बहुत डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत होती है, तो हमारे इस बुद्धि रूपी यान को भी बहुत डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। अगर जरा भी कम होगा, रिफाइंड नहीं होगा तो उड़ेगा नहीं, यही रह जाएगा साकार वतन में। कौन सा पेट्रोल है? बहुत अच्छे नशे के, उमंग उत्साह के संकल्प, खुशी के संकल्प। खुशी और नशा पेट्रोल का काम करते हैं। अगर सारा दिन खुशी में नहीं रहते, अपने ऊंचे नशे में, सामान में नहीं रहते, तो ये यान उड़ता नहीं है, यहीं रह जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको कोई न कोई सामान दिलाए हैं स्मृति में, और सामान का चिंतन करते हैं तो सहज ही यान उड़ने लगता है। मन से हम यात्रा कर सकते हैं। बाबा हम सबको कहते हैं कि बच्चे रोज कोई नए नए सामान लो, क्योंकि हमारा योग है वैरायटी और नवीनता वाला, एक जैसा योग नहीं करना। कई बार अभ्यास करते करते एक जैसी पद्धति, एक जैसे नियम अपना लेते हैं और समझते हैं ऐसे ही योग करना है बस। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, शांति धाम के निवासी हूँ, शांति सागर की बच्ची हूँ, ऐसा चिंतन करते करते कई बार बोर हो जाते, थकावट अनुभव होती, यही सोचना है बस रोज। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे योग के अच्छे अनुभव करने के लिए कुछ न कुछ वैरायटी करो, नवीनता से करो। केवल एक ही स्थिति का रोज अनुभव करेंगे तो थकावट, बोरिंग हो गया। इसलिए कभी बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कैसी श्रेष्ठ जीवन बाबा ने हम सबकी बनाई है। अगर जरा अपने पास्ट लाइफ को भी देखते, वर्तमान को देखते, तो दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता है कि बाबा आपने क्या थे, क्या बना दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। एक बार मैं एक स्थान पर गया तो एक भाई हमारी गाड़ी की ड्राइव कर रहा था, तो कहता है भाई साहब एक अनुभव सुनाऊं। क्या पता नहीं क्या सुनाना चाहता है। कहता है कि मैं पास्ट लाइफ में रावण का भी बाप था। ऐसे बोला तो हमने उसकी तरफ देखा, हमने क्या बोला, रावण का बाप क्या होता है। कहता भाई साहब रावण के जितने ऐब हैं, जितनी कमी कमजोरी वर्णन होती हैं, उन सबसे अधिक मेरे अंदर सब प्रकार की बुराइयां थी। अगर मैं अपने दरवाजे से बाहर निकलता था तो लोग अपने अपने घरों के और दुकानों के दरवाजे बंद कर लेते थे, इतना मुझे गुस्सा था, शराब पीता था और कभी कभी तो इतनी पी लेता था जो नाले के अंदर पड़ा होता था। सब प्रकार की बुराइयां थी, सब प्रकार के बुरे से बुरे संस्कार थे। मैंने अपने घर की सारी प्रॉपर्टी, माता पिता का वर्षा सब बुराइयों के पीछे गंवा दिया। न बिजनेस रहा, न परिवार सुखी रहा, सब मेरे से तंग थे। लेकिन अचानक एक दिन ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड देखा, प्रदर्शनी कहीं लगी थी और मैं ज्यों अंदर गया और बाबा ने मुझे जादू लगा दिया। जाते ही मेरी सारी बुराइयां अपने आप कैसे छूट गई मुझे पता नहीं। और ऐसे कहते कहते वो रोने लगा, आंसू भर गए, इतना प्यार में आ गया। कहता है मेरी क्या लाइफ थी और कैसे बाबा ने हमारे जीवन को बदल दिया। बस नशे से, खुशी से, प्यार से, एकदम बाबा बाबा बाबा। ये योग नहीं है, इससे अच्छा योग और क्या होगा। उसके दिल से आवाज निकल रही थी कि बाबा आपने मेरी क्या जीवन बना दी। उसके बाद कहता है मेरा पूरा समाज परिवार ब्रह्मा कुमारियों को मानने लगा कि कोई तो जादू है इनके पास, कुछ तो है जो इनके पास जाते ही इतने बड़े संस्कार, कड़े संस्कार वाले भी चेंज हो सकते हैं। कहता उस दिन से लेकर के हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, सोने चांदी का बिजनेस है उसका, बिजनेस अच्छा हो गया, परिवार सुखी हो गया, एकदम घर ही स्वर्ग बन गया। और इतने नशे और खुशी से बोल रहा था, सुना रहा था अनुभव, जो उसका अनुभव सुन करके ऐसे लगा कि ऐसी जीवन बाबा हम सबकी बना रहा है। कलयुग के अंदर क्या जादू है, ज्ञान का जादू ही है, प्यार का जादू है। आप लोगों को प्यार का जादू लगा या ज्ञान का जादू लगा है? किनको प्यार का लगा है? प्यार का लगा है। अच्छा, दो ही हाथ उठा रहे प्यार में, सब जी ज्ञान वाले हैं। हम लोगों को तो प्यार का जादू लगा है, हमको तो ज्ञान बाद में मिला। भले ज्ञान मधुमन बाबा का घर में था, घर के अंदर मुरली चलती थी, लेकिन मैंने 12 साल घर में रहा लौकिक में। जब ज्ञान आया घर के अंदर 1960 में गीता पाठशाला खुली और मैं 1971 तक एक दिन भी मुरली नहीं सुनी। घर में गीता पाठशाला, पिताजी माताजी क्लास कराते थे, मैं 8:30-9 बजे सो के उठता था, मुरली पूरी हो जाती थी उसके बाद। मुरली क्या होती है कुछ पता नहीं था, लेकिन मधुबन में आया और मधुबन में दादियों का, बड़ों का प्यार मिला। और वो प्यार ऐसा मिला जैसे कोई बिछुड़ा हुआ बच्चा आ जाता ना ऐसे। लेकिन एक दो सावधानियां भी मिलती थी प्यार में। सबसे पहली सावधानी मिली जब मैं मधुबन में रहने लगा तो दीदी की नजर बहुत तेज थी। सुना दीदी का अनुभव सुना होगा, उनकी परखने की शक्ति बहुत तेज थी। उन्होंने परख तो लिया कि ये मधुबन के लायक है, रह सकता है। और जब मैंने संकल्प किया मुझे यहीं रहना है, समर्पित होना है, तो मुझे कान में इशारे में कहती है, संघ की संभाल करना। अब मेरे अंदर ये बात ऐसे लगी कि मधुबन में आकर के इतने अच्छे परिवार के बीच में ये सावधानी क्यों? संघ तो बाहर वालों का खराब है, दुनिया वालों का संघ खराब है, लेकिन दीदी ऐसे क्यों कह रही है कि यहां भी आके संघ की संभाल करना? फिर दीदी ने ही कहा कि तुम्हारे प्रश्न उठे होंगे। हमने कहा हाँ जरूर उठे। मैं अपने साथियों के संग में समझता हूं उनका संग खराब था, कॉलेज स्कूल की लाइफ खराब थी, यहां तो सारे पवित्र ब्राह्मण आत्माएं रहती हैं, इतना अच्छा परिवार है, और इसके बीच में मुझे क्या संभाल करनी है? तो दीदी कहती है कि यहां भी सब एक जैसे नहीं है, कई ऐसे हैं जिनका अपनी उन्नति पर अटेंशन ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। अमृत वेला नहीं करते हैं, मुरली क्लास नहीं करते हैं, सिर्फ सेवा करते हैं, भोजन करते हैं, कपड़े लेते हैं। तो ऐसे तो बिना पैसे वाले मजदूर होते हैं। सफेद कपड़ा लिया, भोजन खाया, सेवा किया। अगर ऐसे के संग में अगर चले गएंगे तो उसका भी रंग लग जाएगा, उन्नति नहीं होगी। अगर ब्राह्मण जीवन के अंदर कोई ने उन्नति के ये दोनों साधन नहीं अपनाए तो वो कभी भी पक्के सच्चे ब्राह्मण वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए बहुत ध्यान देना कि अगर कोई इसमें अलबेला है, सवेरे सोया रहता है, मुरली क्लास नहीं करता है, या जब सामने साथ में बैठता है तो बड़ों के यज्ञ की कोई नेगेटिव बातें आपको सुनाता है कि ऐसे होता है, यहां भी ऐसे होता है, ये ऐसे करते, ये ऐसे करते। बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाता है लेकिन कौन अभी ऐसा बना है? अगर कोई मुरली के परिवार के यज्ञ के बारे में गलत बोले, नेगेटिव बोले, तो समझ जाना ये संघ डुबो देगा, पार नहीं ले जाएगा। ये दीदी की मेरे को पहली शिक्षा मिली, ऐसे संघ वालों के साथ में न बैठना है न जाना है। और उसके बाद जब देखा मेरा चार्ट कि मैं रेगुलर पंचुअल हर बात में था, तो दीदी जितने नए समर्पित, क्योंकि वो समर्पित कराने का समय था बाबा के अव्यक्त होने के बाद, दीदी दादी का एक लक्ष्य रहा कि जितनी साकार में बाबा ने भविष्यवाणियां की हैं, जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, उन सब को प्रैक्टिकल करना है। बाबा ने कितनी सारी बातें बताई थी साकार में कि बच्चे आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगी, बहुत वृद्धि होगी, बहुत विस्तार होगा, गली गली में आपके सेवा केंद्र खोलेंगे, ये संस्था विदेशों में जाएगी, और सब धर्म वाली आत्माओं के लिए ज्ञान है। तो दीदी दादी के अंदर बाबा के इन महावाक्यों की बहुत गहरी छाप थी, इसलिए उनकी बुद्धि में ये था कि जब परिवार बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा, सेवाएं बढ़ेंगी, तो उसके लिए सेवाधारी भी चाहिए, और सेवाधारी भी ऐसे चाहिए जो यज्ञ के अंदर ईमानदार हूं, वफादार हूं, सच्चे हूं, ऐसे सेवाधारियों की जरूरत है। तो दीदी की बहुत नजर रहती थी, कोई भी सेवाधारी आते थे, क्योंकि मैं केवल एक मास की छुट्टी में आया था, मैं 9th में पढ़ता था, तो स्कूल की छुट्टियां थी। मैंने कहा कि मेरे लौकिक बहन मधुबन में उस समय रहती थी, बड़ी बहन, उसने कहा छुट्टियों में कम से कम एक बार तो मधुबन घूम के जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, छुट्टी लिया, क्योंकि मेरे दादाजी ज्ञान के बिल्कुल एंटी थे, पिताजी के जो बड़े भाई थे वो बिल्कुल मुझे छुट्टी नहीं देते थे, न मम्मा से साकार में मिलने के लिए छुट्टी मिली, न साकार में ब्रह्मा बाबा के सामने आने की छुट्टी मिली। बाबा कानपुर में आए, घर के बिल्कुल नजदीक आए, लेकिन मैं नहीं जा पाया। सारा परिवार जाता था लेकिन मुझे छुट्टी नहीं थी, और मैं इकलौता बेटा था। उनको ये संकल्प था, ये अगर ब्रह्मा कुमारी में चला गया तो कुलदीपक कौन बनेगा। तीन भाइयों के बीच में अगर एक बच्चा हो तो माता पिता की तो चलो, माता पिता तो पक्के बाबा के बच्चे बन गए, उनको तो संकल्प नहीं था शादी करेंगे, लेकिन जो हमारे दादा और चाचा थे, चाचा भी कुमार थे, बैचलर थे, और दादा भी कुमार थे, उन दोनों ने शादी नहीं की थी, क्योंकि वो भक्ति के अंदर बहुत प्रवीण थे, तंत्र मंत्र बहुत सारी विद्याएं जानते थे, और चाचा जी बचपन में ज्ञान में आ गए, उन्होंने शादी नहीं की। अब हम दो भाई बहने, बहन समर्पित हो गई, अब मैं अकेला बच्चा परिवार में, तो नेचुरल है कि वो सोचेंगे कि अगर ये भी चला गया तो कुलदीपक कौन बनेगा, कोई तो कुल का दीपक चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की है न जाए, तो मुझे रोकने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन जब मैंने कहा एक मास की छुट्टी है स्कूल की, मैं घूम के आऊं, तो उनको क्या पता है घूमने जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा, तो मुझे ऐसे ही बोल दिया भले एक महीने के अंदर आ जाना, जाओ घूम के आओ। और एक महीने के अंदर दीदी की नजर पड़ी, दीदी की नजर पड़ जाए तो बस कोई छूट नहीं सकता। दीदी ने देख लिया ये बालक बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? क्योंकि मैं छोटा था और दादियां बड़ी आयु की थी, तो मुझे हर दादी की सेवा करने का चांस मिल गया, और दादियों की सेवा तो स्थूल ही थी उस समय, और कोई तो काम नहीं था, हर एक के पास ब्राह्मणी तो थी ही नहीं, तो स्थूल सेवा क्या थी कि कपड़े धुलाई हुए कपड़े सुखा दो, पानी की बाल्टी पहुंचा दो, कोई को भोजन पहुंचा दो, कमरों में कोई कोई मंगाते थे। और जब मैं उनके पास कोई सेवा करने के लिए जाता था तो सेवा तो थोड़ी किया लेकिन पालना बहुत मिली, टोलियां मिली भर भर करके, सौगातें मिली, तो ऐसा प्यार मिला, ऐसा स्नेह दिया दादियों ने, सेवा किया। और सेवा कहता बाबा कहता करो सेवा खाओ मेवा, तो मुझे एक मास के अंदर ही सेवा का रिटर्न मिलने लगा और बहुत प्यार पालना मिली। तो दीदी ने कह दिया कि हाँ ये ठीक है, बालक सबका पसंद है, सबको पसंद है, इसलिए भले एक साल और पढ़ लो फिर आ जाना, फिर समर्पित हो जाना। तो मैंने कहा एक साल भी पढ़ के मैं क्या करूंगा, अभी तो विनाश होने वाला है। बाबा विनाश की सावधानी तो बहुत समय से दे रहे हैं। तो दादी बड़े मुस्कुराते हुए मुझे कहती है कि विनाश तो होगा लेकिन अभी तुम्हारी आयु छोटी है, 18 साल के पहले हम समर्पित नहीं करते, लेकिन दीदी की नजर पड़ी है इसलिए तुम बाबा से पूछो बाबा क्या कहता है। और आप सबको मालूम है कि उस समय बाबा अकेले अकेले मिलते थे और ऑफिशियल नहीं, गद्दी पर भोग नहीं होता था, सामने बाबा के कमरे में जो गद्दी है उस गद्दी पर गुलजार दादी बैठ जाती थी, बाबा आ जाते थे, पहले दीदी दादी मिल लेती थी, उनके आगे जो बोलना होता महावाक्य चलाने होते सुना देती, बाबा सुना देते, और ईशु दादी नोट ले लेते, पर तीन ही होते थे बाबा के पास, चौथा अंदर नहीं जाता था। और जब ये पूरा हो जाता मिलन, फिर मधुबन वाले जो आते थे एक एक, कोई को 15 मिनट, कोई को आधा घंटा, बाबा आराम से बैठ करके प्यार से दृष्टि देगा, हालचाल पूछेगा, फिर कभी कभी जन्म कहानी पूछेगा, कैसा है आपका पास्ट, कैसा है वर्तमान, कैसा। तो ऐसे बाबा के पास जब मैं गया तो मैंने कहा बाबा दीदी कहती है कि अगर सेवा में रुकना चाहो तो रुक सकते हो, और दादी कहती है आपकी आयु छोटी है, क्या करना है मुझे? तो बाबा बहुत मुस्कुराए, बहुत प्यार से बोला, जैसा दीदी दादी कहती ना ऐसा ही करना। दीदी तो कह रही है, दादी अलग कह रही है, दीदी अलग कह रही है, और बाबा कहता है जैसा दीदी दादी कहती है ऐसा ही करना। तो फिर दीदी दादी से छुट्टी लिया हमने, कहा चलो एक साल तो पढ़ लेते हैं जाके। और जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया तो वहां पर उस समय ये बांग्लादेश वाली लड़ाई छिड़ी भारत के अंदर, ये जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया वो इंदिरा गांधी जी ने उस समय बहुत पावर यूज किया था, उस समय प्राइम मिनिस्टर वो थी। और उस समय ऐसी लड़ाई वो भयानक थी जो शाम को 5 बजे के बाद ब्लैक आउट हो जाता था हर घर में, हर जहां मैं पढ़ता था वहां तो लाइट थी, गांव में लाइट नहीं थी, लेकिन जहां स्कूल था वहां पर मैं रहता था, अपने हाथ से बनाता खाता था, तो शाम को लाइट नहीं जला सकते थे, सब कमरे बंद, सब पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल होता था। तो हमने बस पक्का कर लिया कि बाबा कहता है ना विनाश होने वाला है, तो अभी विनाश शुरू हो गया, अब मुझे नहीं रहना यहाँ, अब बाबा के घर में जाना है, पक्का हो गया। और बस हाई स्कूल का लास्ट पेपर, लास्ट दिन पेपर दिया और उसी दिन ट्रेन लिया और मधुबन वापस आ गया। पिताजी ने बहुत प्यार से चिट्ठी लिख के दिया, क्योंकि बिना चिट्ठी के तो घर में आने की छुट्टी नहीं मिलती मधुबन आने की। तो उन्होंने जो पत्र लिखा उस पत्र को पढ़ के दादी तो ऐसे देखने लगी, कहती है तुम्हारे पिताजी को इतना निश्चय है? तो उन्होंने लिखा कि संगम युग पर जब भगवान नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए आए और उसमें अगर मेरे बच्चों का सहयोग कुछ काम में आ जाए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। और अगर दादी जी इन बच्चों को चांस मिलता है तो मुझे भी चांस दे देना, क्योंकि मैं भी अभी और तो कोई है ही नहीं, क्या करूंगा घर में रह के। तो जब दादी ने पत्र पढ़ा तो कहते हाँ हाँ ठीक है, पिताजी की चिट्ठी मिल, छुट्टी मिल गई है, भले लगो सेवा करो। तो मैं सेवा शुरू किया, सेवा में सब स्थूल काम थे, मैंने कभी किया तो था नहीं, घर में तो कभी कुछ काम ही नहीं किया था। और मधुबन में आए तो नाइट ड्यूटी है, पानी गर्म करना एक जगह पर, सबको सुबह 4 बजे बाल्टियां पहुंचाना भर भर कर कमरों में, 6 बजे उसके बाद धोबी घाट शुरू करना, वो धोबी घाट पाटे पर होता था। फिर उसके पहले रोटी बनाने के लिए आटा बनाना, गूंदना जाके भंडारे में, और रोटी भी चूल्हे पर बनती थी, लकड़ियां गीली होती थी, बरसात बहुत थी, आंखें लाल लाल हो जाती थी। ये सब कर्मणा सेवाएं हैं। और दीदी दादी को पक्का था एक भी नौकर नहीं रखना घर में, अब नौकर नहीं रखना है तो इतने बड़े घर की सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं, हर चीज का ध्यान रखना है, और मधुबन वाले ही करेंगे, भाई समर्पित करेंगे और कोई बाहर वाला नहीं करेगा, कोई की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सब कार्य मिले, आते ही सेवा में लग गए भाई बहनों के साथ। सबसे पहली सेवा पता क्या कराई दादियों ने, भाइयों ने कराई प्यार से, बाहर से बड़ी बड़ी लकड़ियां आती थी, सारा लकड़ी पर खाना पानी गर्म होता था, मोटी मोटी लकड़ियां जंगल से आती थी, ट्रक का ट्रक आता था, वो खाली करना पड़ता था पूरा ट्रक, मजदूर नहीं खुद ही खाली करना। लेकिन कोई भी सेवा अगर किया तो उसके रिटर्न में बहुत कुछ प्यार मिलता था, पालना बहुत मिलती थी। मान लो कोई हार्ड वर्क करके हम 2 घंटा 3 घंटा आए हैं, पसीना निकाला है, तो दादी कहेगी इसको हलवा खिलाओ गरम गरम, अच्छा हलवा खिलाओ, मक्खन खिलाओ, मतलब अच्छी खातरी होती थी सेवा करने वालों की। तो ऐसे करके दादी दीदी ने सेवाएं तो यज्ञ की किया कराई, लेकिन प्यार बहुत दिया, पालना बहुत दी, और उस पालना के कारण परिवार के बहुत समीप आ गए। फिर बाद में खुद ही संकल्प किया कि मधुबन में मुझे कुछ ज्ञान योग के लिए कुछ अलग इंटरेस्ट था मेरा, कि मैं टाइप करूं, तो मैंने ऐसे ही एक भाई टाइप पिस्था मधुबन के अंदर उसको बोला मुझे टाइप सिखा दो, तो कहता टाइप नहीं सिखाएंगे क्योंकि दीदी दादी की मना है, टाइपराइटर एक ही है, अगर ये खराब हो जाता है तो बहुत दूर अहमदाबाद या अजमेर ले जाना पड़ता है ठीक कराने के लिए, तो दीदी दादी छुट्टी नहीं देती हैं, किसी दूसरे को सिखाना नहीं। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, दीदी दादी को 72 में कुछ बीमारी हुई है और दोनों ही बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज के लिए चली गई, और सभी का बहुत प्यार था उस समय, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद यही दोनों थी। तो दीदी दादी जब बॉम्बे गई तो मधुबन वालों को बड़ा आया कि हम भी बॉम्बे जाएं मिलने के लिए घूमने के लिए, तो दादी ने कहा ठीक है सब नंबरवार एक एक दिन के लिए आओ, सुबह आओ सारा दिन घूमो, शाम को दूसरी ट्रेन से चले जाओ। बॉम्बे आने की मधुबन वालों को छुट्टी मिली तो नंबरवार सब जाने लगे, सबको छुट्टी मिल गई, लेकिन जो टाइप करता था उसको छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि अगर वो चला जाएगा तो मुरली दो दिन बंद हो जाएगी तीन दिन, और मुरली बंद हो जाएगी तो सारे ब्राह्मणों के संकल्प चलेंगे, इसलिए उसको बेचारे को छुट्टी नहीं मिली। अब वो कहता है कि मुझे तो किसी को सिखाना है आप समान बनाना है, तो दीदी कहती है तुमने तो नहीं आप समान बनाया, तुमको छुट्टी नहीं है। अब वो कहता आप समान मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि दीदी ने ये शर्त रखी थी जिसको भी तुम टाइप सिखाओगे उसको सिंधी आनी चाहिए, क्योंकि बिना सिंधी भाषा को पढ़े वो क्या टाइप करेगा। मुरलियां सिंधी भाषा की, यीशु दादी जो लिखती थी बाबा के नोट्स लिखती थी, राइटिंग सिंधी है लेकिन लिपि हिंदी है, पढ़ाई हिंदी है वो, जैसे बाबा दादियां हमारी दादी जानकी मुरली पढ़ती हैं वो लिखा सिंधी में है लेकिन है हिंदी। तो वो सीखने के लिए मैंने कहा सिंधी मैं यूपी से हूं हिंदी वाला सिंधी सीखूंगा कैसे, तो विश्व रतन दादा कहते हैं अरे कोई बड़ी बात नहीं तो मेरे पास रोज आया करो मैं सिखा देता हूं। विश्व रतन दादा तो जानते उनकी राइटिंग कैसी थी, एकदम मोती जैसे अक्षर, और लास्ट दिन जिस दिन शरीर छोड़ा है चेक सारे साइन वही करते थे यज्ञ के अकाउंट के, इतनी परफेक्ट राइटिंग जो कोई भी जरा भी नीचे नहीं होगा, हिलेगा नहीं हाथ, और पूरी साइन करते थे विश्व रतन, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लकीर मार दिया, बहुत अच्छी राइटिंग थी। तो दादा के पास मैं फिर सिंधी सीखने के लिए सुबह सुबह चला जाता था, योग के बाद आधा घंटा काका गाही होता था लेकिन सिंधी में लिखना उसको पढ़ना अक्षर मिलाना, और मेरे को 8-10 दिन में बहुत अच्छी तरह से सीख गया, पढ़ गया, पढ़ना सीखा लिखना सीखा, फिर टाइप सीखना शुरू किया। तो जब दीदी दादी बॉम्बे से वापस आई तो दीदी कहती तुम टाइप सीखा है, हमने कहा हाँ दीदी सीखा, तुम सिंधी जानता है सीख लिया, हाँ दीदी सीख गया, कहती अच्छा सिंधी सीख गया तुम इतनी जल्दी, मेरे को बुलाया कहते मेरी डायरी पढ़ के दिखाओ। मैं दीदी की डायरी का एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाया, कहती क्या सीखा तुम, दीदी ये तो सिंधी नहीं लगती है ये कुछ और ही लगता है, क्योंकि दीदी स्कूल नहीं पढ़ी थी और दीदी ने बहुत शॉर्ट हैंड अपने नोट्स लिखाए थे, शॉर्ट हैंड उनकी अपनी थी, लक्ष्मीनारायण लिखना है तो एल और एन लिख दिया, अब सृष्टि चक्र लिखना तो यस और सी लिख दिया, ये दीदी ये सिंधी भी नहीं है इंग्लिश भी नहीं है अब इसको मैं कैसे पढ़ूं। तो हंसती थी, कभी कभी खुद भी नहीं पढ़ पाती थी, और प्रश्न बहुत अच्छे लिखाते थे, तो मेरे को कहती जब तक तुम मेरी राइटिंग नहीं सीखोगे ना तब तक तुम काम नहीं आओगे, इसलिए पहले पढ़ना सीखो। तो फिर उसके लिए हमको फिर एक टीचर दिया, कमलमणि दादी थी, वो दीदी की राइटिंग सब पढ़ लेती थी, फिर बोला कमलमणि के पास बैठा कर उसको ले जाओ अपने ऑफिस में, वो तुमको पढ़ना सिखाएगी। और बहुत सीधी दादियां एकदम सरल, इन दादियों की नेचर इतनी सरल थी, जो कहो जैसे कहो हाँ जी, कभी उन्होंने ना नहीं किया बाबा के सामने से ही। तो कमलमणि दादी को मैं कहता था दादी मेरे ऑफिस में चलो दीदी की राइटिंग पढ़ करके मेरे को सुना दो, मैं टाइप करूंगा, उड़ा दिया जाती थी चुपचाप, बैठ जाती थी आकर के फिर सुनाती थी। ऐसे करके मैंने दीदी की राइटिंग पढ़ना सीख लिया, फिर क्वेश्चन आंसर निकालना सीखा। फिर धीरे धीरे वो भाई जिसने मुझे सिखाया था वो कोई कारण बन गया, वो 76 में लौकिक में चला गया और पूरी डिपार्टमेंट मुरली की जितनी सेवाएं थी वो टोटल मेरे ऊपर आ गई। अब सब काम मैं स्थूल करता था और पूरी डिपार्टमेंट मुरली की मिली, और उस समय मुरली केवल 200 कॉपी निकलती थी। साइक्लो स्टाइल स्टेंसिल लिखते थे, पहले हाथ से सिंधी में लिखते थे और दूसरा स्टेंसिल टाइप करते थे। तो एक स्टेंसिल से 200 कॉपी तो आराम से निकल जाते थे, लेकिन जब कॉपियां बढ़ने लगी तो एक बार, दो बार, तीन बार, मैंने मुरली 4 बार स्टेंसिल दिन में काटा, और 3-4 पेज की मुरली होती थी, बड़ा मुरली कागज होता, 3-4 बार मुरली टाइप किया, फिर उसको करेक्शन किया, फिर बीच बीच में दादियों ने कहा कि इसको प्रश्न उत्तर का रूप दे दो, कभी कभी ऊपर सार लिखो, नीचे भी लिखो, प्रश्न उत्तर लिखो। हमने कहा ये सब काम क्यों लिखना। दादी को एक ये रहता था कि हमारी अभी जन बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ रही है और बहुत अच्छे अच्छे वीआईपी संपर्क में आ रहे हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, वो पूरा 1 घंटे की मुरली भी पढ़ नहीं पाते, और कभी कभी फोन करके बोलते हैं दीदी हमको मुरली का एसेंस सुना दो, बाबा की कोई 1-2 बातें बता दो। तो वो टीचर्स अपने अपने ढंग से सुनाती हैं, इसलिए तुम ऐसा करो कि मुरली का एसेंस तुम निकालो और जब मैं बोलती हूं वही लिखो, पहले सिखाया ऐसे। क्योंकि दादी जब मुरली सुनाती थी तो उसका एसेंस पहले क्लास के अंदर खुद सुनाती थी, ऐसे ही बिना पढ़े एसेंस सुनाती थी, और फिर कोई 1-2 प्रश्न पूछती थी जिससे सारी क्लास को रिफ्रेश करते थे। कहती यही नोट कर लिया करो, भले मुरली पढ़ करके नहीं निकालो लेकिन ये नोट ले लो कि जो मैं सुनाती हूँ पढ़ करके बिना पढ़े हुए पहले, वो सार होता है, क्वेश्चन आंसर होता है। तो ऐसे करके मुरली से दादी जो चिंतन करके सुनाती थी वो मैंने एसेंस लिखा, क्वेश्चन आंसर बनाए, और फिर धीरे धीरे मुरली और रिफाइन करते गए। रिफाइन ऐसे हुई क्योंकि समय अनुसार बहुत विस्तार हुआ। बाबा ने तो साकार में कुछ बच्चों के सामने मुरली सुनाई, उस समय बाबा के सामने 10, 12, 15, 20 होते थे। शुरू कहाँ से हुई, हिस्ट्री हाल के पहले, अभी अगर पांडव वन आप गए होंगे तो यीशु दादी के ऑफिस के पीछे एक छोटा सा हाल है, वहां ही मुरली चलती थी, साकार ब्रह्मा बाबा जब थे, और वहां मुरली जब चलती थी तो 15-20 भाई बहने होते थे बाबा के सामने, और न मुरली उस समय ज्यादा छपती थी, केवल नोट्स लेते थे, जहां जहां दादियां रहती थी यीशु दादी शांतामणि दादी नोट्स लेकर के सबको भेज देते थे। अब मुरली जब प्रिंट होने लगी तो दादी का ध्यान गया कि ये बात साकार के समय की बात थी, ब्रह्मा बाबा के अपने अनुभव थे, और उस समय हमारा बहुत विरोध था संस्था का, कई बातें ज्ञान की नहीं होने के कारण वो लोग समझते थे हमारे सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, जो शास्त्रों का ज्ञान है उसका विपरीत बातें हैं इसमें। तो बाबा ने जो सुनाया था दादी ने कहा इसको थोड़ा सा शब्दों में सेटिंग करो जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो, तो वो सेवा मिल गई कि उसको बिल्कुल परफेक्ट जाना है, एडिशन नहीं करनी है, लेकिन ऐसी कोई बातें हैं जो समय अनुसार चेंज हुआ है उसको करेक्शन कर सकते हो। वो दादी मुझे बुलाती थी सवेरे मुरली के बाद और मुरली के अंदर ब्रैकेट लगा के देती थी कि ये बात अभी समय की जरूरत नहीं है। अब मैं रोज दादी के पास जाता, रोज का दिनचर्या थी, अगर मुरली के बाद मैं नहीं गया हूं तो दादी कहेगी आज अब्सेंट हो गया, इसको बुलाओ। जब तक मेरे से मुरली के पर पूरी चर्चा नहीं होती थी तब तक दादी नाश्ता नहीं करते थे मुरली के बाद। और मैं रोज ही दादी के पास जाता था और रोज मुझे पूरी मुरली दिखाती थी, देखो ये मुरली मैंने पढ़ी, ये मैंने सुनाया, ये बात नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई उसके कई कारण बता देते थे। इसलिए मुरली बहुत परफेक्ट बनाओ, कोई भी इसके अंदर बात न निकले, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें कभी कभी बाबा अपने बच्चों के सामने बोला है, वो पब्लिक में जरूरत नहीं है। तो वो शब्द जो दूसरों को पिंच हो जाए, जैसे एक बात मैं छोटी सी बताता हूं। एक दिन बाबा ने, आज की मुरली में बाबा ने विवेकानंद और रामकृष्ण को बहुत याद किया मुरली में, कि रामकृष्ण एक बहुत पक्का सन्यासी था, उसको तो बैठे बैठे देवी का साक्षात्कार हो जाता था, और ब्रह्मचर्य की पालना के लिए उसने अपनी स्त्री को मां कहा। सन्यासी था और बहुत कट्टर था, बहुत पक्का था, और विवेकानंद विद्वान था, उनका चेला जो शिष्य था। तो बाबा ने एक दिन मुरली के अंदर कहा कि विवेकानंद मछली खाता था, जो बंगाली थे, तो मछली बंगालियों का तो भोजन है। तो बाबा ने ये शब्द मुरली के अंदर कह दिया और मुरली छप गई। अब बंगाल वालों को ये शब्द इतना खराब लगा, जो मेरे से आके लड़ने लगे कि बाबा तो कहता सबकी विशेषता देखनी चाहिए, सबके गुण ग्रहण करने चाहिए, कितना बड़ा विद्वान था, कितना उसने नाम किया अपने हिंदू धर्म का, सारे अमेरिका के अंदर हलचल कर दिया जा करके, उसके गुणों का वर्णन क्यों नहीं किया गया, मछली खाया ये क्यों बोला। तो मैंने कहा कि बाबा ने बोला, बच्चों के बीच में बोल दिया, तो आपको क्या तकलीफ है। कहता हमारे बंगाल वालों को बड़ा धक्का लगता है इसे, ये शब्द आप हटा दो। ठीक है, इसमें कोई हर्जा नहीं, बाबा का ऐसा शब्द था, बच्चों के आगे बताया, ठीक है हटा देते हैं। लेकिन कई लोगों को जब ऐसे ऐसे बच्चे निकलने लगते हैं तो उनके विषय में अगर कोई ऐसे शब्द बोले गए हैं तो उनको ऐसे लगता है कि ये बात हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी जाति के लिए विरुद्ध है। ज्ञान की बातों में कोई करेक्शन करना, कोई एडिशन करना उनकी जरूरत नहीं, वो तो बाबा ने बहुत संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया है। अब हमारे 84 जन्मों का ज्ञान है, पुनर्जन्मों का ज्ञान है, 5000 सर्किल का ज्ञान है, उसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं, 3 लोकों का ज्ञान है। सत्य ज्ञान से बाबा ने जो दिया है बहुत एक्यूरेट है और परफेक्ट बाबा ने दे दिया। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब बोलते तो कई बातें ऐसे उस समय के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, बच्चों के बीच में अनुभव सुनाया, तो दादी का ध्यान जाता था, विशेष करके कहती थी समय अनुसार अभी इसकी जरूरत नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे आने लगे हैं। हमारा सन्यासी लोग विरोध करते थे, बहुत सारी बातें कहते थे, गालियां देते थे, अभी वो हमारे क्लास में बैठे हैं, उनके लिए बाबा ने अगर कोई ऐसे शब्द बोले हैं तो उसको हटा दो, नहीं तो उनको खराब लगेगा। तो इस तरह से बाबा ने, दादी ने हमें मुरली को सेट करने की ट्रेनिंग दी। कई लोग कहते हैं भगवानों के वाक्य के आप क्यों कट करते हो, कट नहीं करना चाहिए। हम कट नहीं करते हैं, बाबा के माँ वाक्य के कट नहीं होते, लेकिन अगर कोई अनुभव उस समय के हिसाब से, आज 50 साल पहले के हिसाब से कोई ऐसी बातें थी तो उनको हम सेट कर लेते हैं, ताकि कोई को भी अभी ठेस नहीं पहुंचे। भगवानों वाच में कोई करेक्शन की जरूरत नहीं, वो तो सत्य वचन महाराज है, बहुत सत्य ज्ञान बाबा ने दिया है। तो ऐसे करके बाबा की मुरलियां रिफाइन होती गई। और एक दिन जब दादी गुलजार जी का ऑपरेशन होना था, बाबा को पता था, दादी को पता नहीं, कोई को भी पता नहीं था, तो एक दिन अचानक बाबा ने एक संदेश भेजा, गुलजार दादी के द्वारा ही संदेश आया कि जितने मधुबन में समर्पित भाई बहने रहते हैं उनसे बाबा पर्सनल मिलेगा। 88 की बात है ये, मार्च में, तो 88 में बाबा पर्सनल मिलेगा, तो हम लोगों को बहुत खुशी हो गई कि बाबा आज हम लोगों से मिलेगा। और उस समय हम मधुबन में 120 भाई थे समर्पित, और करीब 60-70 बहने थी, वो भी बुजुर्ग बहने, अधिकतर 50 के लगभग होंगे। तो दादी ने केवल मधुबन निवासियों के लिए बाबा के आने का प्रोग्राम मनाया 20 मार्च को 1988। तो बाबा शाम को आए 7 बजे 6:30 बजे जैसे आते हैं, पहले मुरली चली और मुरली के बाद दादियां चली गई और फिर बाबा ने एक एक से मिलना शुरू किया। हम 120 भाई 12 घंटे लगातार केवल भाई मिले, बहने रह गई। सुबह 6:30 बजे मेरा नंबर आया, क्योंकि मैं बाबा के एक एक शब्द को नोट करता था। उस समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, एक टेप रिकॉर्ड मशीन दीदी ने एक बार दिया था, कभी रिकॉर्डिंग कर लेता था, लेकिन रिकॉर्डिंग को फिर सुन करके टाइप करने में बड़ा टाइम जाता था, इसलिए मैं नोट्स लेता था, लिखता था, हाँ राइटिंग हाथ से। पूरी रात मैंने लिखा जो कुछ बाबा ने एक एक बच्चे को वरदान दिए, उनके लिए महावाक्य उच्चारण किए। तो जब सवेरे 6:30 बजे के बाद दादियां आई बाबा को विदाई देने के लिए, तो बोलती हैं कि बाबा ने आप लोगों को क्या सुना दिया, रात भर आप लोग ही बाबा के साथ थे, बहने कैसे रह गई। 6:30-7 बजा था सवेरे का, तो मैंने कहा दादी आज बाबा ने रात भर हम भाई बहन भाइयों को बहुत से वरदान दिए, बोले इतने वरदान दिए रात भर, अच्छा तुम टाइप करके ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो कुछ मैंने लिखा था सब टाइप किया, तो इतनी सारी मोटी किताब जैसा बन गया। तो जब मैं दादी जी के पास लेके गया तो दादी कहती है ये क्या करोगे। तो मैंने कहा दादी ऐसा है, जिसको बाबा ने बोला है उनका फोटो भी निकला है, तो अपना फोटो और ये बाबा के बोल महावाक्य के अपने कमरे में सब लगा लेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट में लगा लें, मैं सबको टाइप करके दे देता हूँ अलग अलग। कहती अच्छा केवल तुम लोगों के लिए बोला है क्या। दादी बोला तुमको ही है। कहती नहीं नहीं बाबा कभी पर्सनल किसी को नहीं बोलता है, इसको तुम ऐसे सेट करो जो सारे ब्राह्मण परिवार को इसका फायदा मिले। कैसे सेट करूं दादी, कितना बड़ा बड़ा बोला, एक एक दो दो पेज है एक एक का, और मुरली के नीचे लिखो वरदान के रूप में ही लिखो। तो मैंने फिर सोचा कैसे करूं, फिर मैंने उसको सेट किया और ये जो पहली लाइन है भव वाली इसको मैंने बनाया, क्योंकि वरदान जो मिलता है आपने भक्ति के अंदर भी देखा है, वरदान मिलता है कोई न कोई पुरुषार्थ के बाद, तपस्या के बाद। ऐसे वरदान नहीं दे दिया भगवान ने किसी को, कोई ने बहुत मेहनत की, बहुत हठ किया, तप किया, तो उसको भगवान ने ब्लेसिंग वरदान दे दिया। किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा कुछ दिन पहले, आशीर्वाद और वरदान में क्या अंतर है, इंग्लिश में शायद दोनों को ब्लेसिंग ही कहते हैं, ऐसे आशीर्वाद को क्या कहते हैं, बाबा वैसे कहता है कि आशीर्वाद में नहीं करता हूं, कृपा नहीं करता हूं, लेकिन बड़ों की बच्चों पर आशीर्वाद सुते रहती है, उनके अंदर ये भावना रहती है कि आगे बढ़े उन्नति करें। कोई भी बात के लिए मात पिता अपने बच्चों को स्वतः आशीर्वाद देता है, उसको मांगने की या मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद तो हम सबको मिल ही रही है, बाबा की कृपा है। बाबा कई बार कहता है मैं जो पढ़ाता हूँ यही मेरी कृपा है, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ ये कृपा है, आशीर्वाद है। ऊपर से तथास्तु कह करके नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मात पिता अपने बच्चों को सदा उन्नति की ओर ले जाने के लिए आशीर्वाद देते ही है। लेकिन ब्लेसिंग्स के लिए, वरदान के लिए तप करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार बाबा की मुरली में सुना होगा वरदान मिलता है दान करने से, अगर तुम कोई दान करते हो कोई चीज का तो वो आपके पास और अथाह रूप में वृद्धि को पाता है, बढ़ जाता है, वरदान हो जाता है। तो ये जो पहली लाइन सेट किया उसके अंदर मैंने एक लक्ष्य रखा कि जिस वरदान को जो भाव के रूप में सफलता मुहूर्त भाव सिद्धि स्वरूप भाव निश्चय बुद्धि विजयी भव। तो विजय के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सफलता के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी विधि क्या है, उसका आधार क्या है। तो आप पहली लाइन अगर पढ़ेंगे तो उसमें मैंने ये सेटिंग रखी कि उसके अंदर जो प्राप्ति करनी है उसका कुछ विधि और उसकी कुछ पुरुषार्थ की बात होनी चाहिए। स्पष्टीकरण बाबा का ही है, स्पष्टीकरण में मैंने कोई भी इधर उधर नहीं किया। अगर बहुत लंबा स्पष्टीकरण तो स्टार्ट जरूर किया, लेकिन बाबा के ही शब्द हैं, उसमें मेरे शब्द नहीं है। लेकिन पहली लाइन जो बनाई है वो सेटिंग की है। तो जब मैंने अपने 120 भाइयों के वरदानों को टाइप किया और सेट किया तो मैंने 365 दिन के लिए तैयार कर दिया कि एक एक मुरली के नीचे मैं इसको लिखना शुरू करता हूं। मैं समझता हूं 88 में मुरली चली है और 90 के तक सेटिंग किया और 90 में ये वरदान मैंने मुरली के नीचे लिखना शुरू किया। अब एक साल जब चला दिया तो उस समय मुरली तो बाद में जाती थी, अभी तो बड़ा सिस्टम वंडरफुल बाबा ने, दादी ने हमारी बनाया, जानकी दादी ने। पता जानकी दादी ने क्या एक दिन कहा, मेरे को दादी के सामने बुलाया कि दादी ये राजू जो है ना हम लोगों को बासी भोजन खिलाता है, बासी भोजन खिलाता है। मैंने कहा दादी मैं भोजन नहीं बनाता हूं। कहती है अरे जो मुरली यही तो भोजन है ब्राह्मणों का, और हम लोगों को लंदन में एक मास के बाद मुरली मिलती है, तुमको पता है। सब तुम लोग पुरुषार्थ कर लेते हो जो बात निकलती है मधुबन में, अब मुझे एक महीने के बाद बासी नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो दादी कहती है, बोलती जानकी दादी तो ठीक है बासी तो हो जाता है ना। मैं दादी फिर क्या करना चाहिए, बोले तुम कुछ ऐसा करो जो मधुबन में सुना जाए वही लंदन में सुना जाए। क्या करूं दादी, पहले से बनाओ, 3 महीने पहले से तैयारी करो, क्योंकि मुरली तो रिपीट है, रिवाइज ही है। लेकिन उस समय ये सिस्टम नहीं था। तो जब मैं एक साल तक वरदान सिद्ध किया और लास्ट दिनों में दादी ने पूछा अब क्या करेगा, दादी वरदान तो सब पूरे कर दिए। बोले पूरे हो गए, बस इतने ही मधुबन वालों को वरदान मिले, वही वरदान है क्या, जितनी 69 से मुरलियां चली हैं तुम सबकी स्टडी करो और सब मुरलियों में कुछ न कुछ 2-4 महावाक्य ऐसे होंगे जो वरदान के रूप में होंगे। तो मुझे काम मिल गया, होमवर्क मिल गया। फिर मैंने 69 से 90 तक की सारी मुरलियों की स्टडी किया, फिर से पढ़ना शुरू किया और जहां से जो वरदान के रूप में महावाक्य मुझे मिले मैंने उसको वरदान के रूप में सेट करके 6 साल तक एक भी वरदान रिपीट नहीं होने दिया। इसलिए आप देखेंगे वरदान रिपीटेड नहीं है, 6 साल के बाद रिपीट करने पड़े हैं। अब मुरलियां 5 साल की हैं, वरदान 6 साल के हैं। तो ये सेवा बाबा ने मुझे दादियों के द्वारा दी। तो उस समय तक पहले मुरली के अंदर ये क्वेश्चन आंसर ये वरदान नहीं होते थे, अभी सब कुछ सेटिंग है और सेटिंग के आधार से मुरली रिपीट हो रही है, रिवाइज हो रही है, 5 साल की साकार मुरलियां हैं और बीच बीच में अव्यक्त बाबा की मुरलियां आती हैं संडे को। अव्यक्त पालना तो हम सब ने ली है और उसके बड़े अच्छे अच्छे हरेक के पास अनुभव हैं। साकार ने साकार रूप में से पालना दी, अव्यक्त ने साकार बन के पालना दी और अब समय आ गया है अव्यक्त रूप में अव्यक्त पालना। हम सब अनुभव कर रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति जिसने जितनी बनाई है और जितना इस व्यक्त भान से परे रहेगा उसको अव्यक्त मिलन का अच्छा अनुभव हो सकेगा। और बाबा कहता उसके लिए कोई टाइम सीमा नहीं है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, जब चाहे आप अव्यक्त वतन में आ सकते हो, खुला निमंत्रण है। लेकिन अटेंशन रखना पड़ेगा, जरा भी व्यर्थ और व्यक्त में अगर किसी का इंटरेस्ट है, अगर उसमें उसकी बुद्धि जाती है तो अव्यक्त मिलन का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसलिए अव्यक्त बाबा का जो पाठ चल रहा है गुप्त रीति से, पहले दादी के द्वारा हमने तो अनुभव किए, देखे, पालना ली, और परिवर्तन जितना जितना पार्ट में हुआ है सब कुछ इन आंखों से देखा है। 73 से ही मैंने लिखना शुरू किया बाबा के साथ, 76 से जितनी अव्यक्त वाणियां चली हैं वो सब हाथ से लिखी गई हैं, और वही वो मुरलियों को सेटिंग करके सबको भेजा गया। एक भी मुरली ऐसी नहीं है जो मेरे द्वारा उसको करेक्ट करके सेटिंग न की गई हो, सब कुछ बाबा ने कराया। और बाबा के पार्ट में समय पर समय हर 10 साल के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन देखा। अभी हम इतना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, फिर भी वीडियो के द्वारा भी अगर कोई बाबा के बच्चे सन्मुख जाते हैं मधुबन में, उनको ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं बाबा से नहीं मिला। 1-1.5 घंटे के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से उनको भासना मिलती है, पालना मिलती है, अनुभव करते हैं कि बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा मधुबन में है और अपनी पालना दे रहे हैं। कितना बजे? 8:30 हो गया, पूरा करना, लंबा हो जाएगा जी। 10 मिनट बताऊं और ये तो कहानियां सुना रहा हूँ आपको।
रात की बारी 6:30 बजे आई तो बाबा ने क्या कहा
जी?
आपकी बारी आई 6:30 बजे सुबह।
मेरे को क्या कहा? मेरे को तो बहुत वंडरफुल वरदान दिया बाबा ने। जब मैं बाबा के सामने बैठा तो बाबा कहता है, बच्चे आपको बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। अब जब बुद्धि का वरदान बोला तो मेरे मन में ऐसे संकल्प आया कि बुद्धि का वरदान तो सरस्वती का वरदान है, और तो बहुत बड़ा वरदान, जिसके पास बुद्धि को वरदान मिल जाए। वैसे तो बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा को दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान दिया है, लेकिन बुद्धि को वरदान मिला है और भी जो चाहे वो बुद्धि कर सकती है। तो मैंने जब ये संकल्प किया, बुद्धि का वरदान मुझे क्यों बाबा दिया, तो बाबा ने उसी समय उसका उत्तर दिया तुरंत कि बच्चे तुमने शुरू से जब से स्टडी शुरू की है अपनी बुद्धि को कहीं भी इधर उधर न ले जाके केवल स्वउन्नति में ही लगाया है, स्वचिंतन किया है, स्वउन्नति में लगाया है, व्यर्थ नहीं गंवाया है, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया है और ये बुद्धि जो चाहे वो कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा वरदान बाबा ने मुझे उसी 88 के मिलन में, पहले भी 1-2 बार बोला है लेकिन उस दिन अंडरलाइन किया, और ये भी बाद में एक लाइन कह दी कि और भी जितना चाहो इस बुद्धि के वरदान को बढ़ा सकते हो, सिर्फ अटेंशन रखना। ऐसा वरदान दिया, मैंने अपने बोर्ड में अपने ऑफिस में लगा के रखा है वो वरदान, सबके पास है। तो ये वरदान हम सबको बाबा से जरूर लेना चाहिए, और इसके लिए और कुछ अधिक पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वचिंतन करें। बाकी कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, बाबा कहता तेरा क्या जाता है, जो करेगा वो पाएगा। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, और जो करेगा वो पाएगा। इसलिए ये स्लोगन पक्का अगर हम रखते हैं तो आप लोगों ने मधुबन मुझे नोट किया हो शायद किसी से ने, शुरू से मैं अटेंशन रखता हूं, अपनी मस्ती में मस्त रहना है, अपनी सेवाओं में जितना परफेक्शन कर सकते हैं करना है, इधर उधर बैठ करके गप सप में बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं आज तक भी एक भी ज्ञानामृत नहीं छोड़ता हूं, कोई भी नया साहित्य निकलता है, कोई भी नई पुस्तक आती है, अगर समय मेरे पास है फुल स्टडी करता हूं। स्टडी का शौक है, कमरे में गया, अच्छी अच्छी किताबें दादियों के अनुभव की है, ज्ञानामृत है, आजकल मीडिया निकलती है, ओम शांति मीडिया निकलती है, शिव आमंत्रण निकलता है, सारा साहित्य मेरे पास है। अगर मेरे पास कोई सेवा और दूसरी नहीं है, मैं उसके फ्री हूं, तो मैं सोचता हूं इधर उधर बैठने की बजाय अच्छी स्टडी करो, अच्छा चिंतन करो। अभी तो ड्रामानुसार एक एपिसोड निकालना शुरू किया हमारे गार्ली स्टूडियो ने अमूल्य रत्न के रूप में। सुना होगा शायद आपके यूट्यूब पर अमूल्य रत्न है, पीस ऑफ माइंड में रेगुलर आ रहा है। तो हरिलाल भाई का एक संकल्प था कि अव्यक्त मुरलियों पर आप जितना उत्तर दे सकते हो उतना कौन देगा, इसलिए आप रोज एक एपिसोड रिकॉर्ड करो। अब एक एपिसोड कैसे रिकॉर्ड करें, तो पूरे दिन में 5 एपिसोड में रिकॉर्ड करता हूँ, 5 दिन फुल बिजी रहता हूँ। 5 एपिसोड 1 घंटा लग जाता है आधा घंटे के एपिसोड में, क्यों कोई जरा भी गलत हो गया या कुछ भी बोल दिया नीचे ऊपर तो कट हो जाता है, दोबारा रिकॉर्ड करो। तो अभी 450 एपिसोड तैयार हो गए हैं, 77 तक हम पहुंचे हैं अभी। हर मुरली के ऊपर हमारी बहन है आदित्य बहन ज्ञान सरोवर की, वो मेरे से क्वेश्चन करती है, मुरली पढ़ के सुनाती है, फिर पूछती इसका स्पष्टीकरण, इसका भाव क्या है। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा एपिसोड चल रहा है और बहुत ब्राह्मणों को इससे फायदा हुआ है। सारे इंडिया के अंदर जहां मैं जाता हूँ सब बताते हैं कि इस एपिसोड को मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि बाबा ने तो बहुत एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, अलंकारिक भाषा है अव्यक्त मुरलियों में, और अलंकारिक भाषा को समझने के लिए उसका स्पष्टीकरण जरूरी है, नहीं तो अलग अलग भाव से लोग उसको कैच करते हैं। पीस ऑफ माइंड में आता है 1:15 वहां इंडिया के टाइम पर, दोपहर में 1:15 से 1:15 तक, 12:45 शुरू होता है, 1:20 पूरा हो जाता है, 25 मिनट का है शायद। और यूट्यूब में तो है ही सब, मैं समझता हूँ 230 यूट्यूब में हमारे पास है अभी इस समय। अमूल्य रत्न आप लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये एपिसोड रिकॉर्डिंग का 1 साल से चल रही है अभी रिकॉर्डिंग। और भी कई प्रकार की सेवाएं, दादियां जितने पत्र आते हैं हमारे पास भेज देती हैं, तुम जवाब दे दो, जानकी दादी की सारी पोस्ट मेरे पास ही आती है, कोई बात पूछनी होती है तो दादी के पास मैं चला जाता हूँ, बता देता हूँ, नहीं तो कहती आप ही कर दो, लिख दो इसको, ये लिख दो इसको, ये लिख दो। कभी कभी तो दादी अभी तो थोड़े समय से कम बात करती है, लेकिन पहले मैं जब जाता था तो कहती थी देखो बैठो ये बीमार है, ये इसने पत्र लिखा है, इसने सब कहा है, इसको पत्र लिखो, इसको पत्र लिखो, इसको पत्र लिखो, दो दो लाइन बता देती थी और फिर मेरे को कहती थी नोट्स नहीं लेना, बुद्धि के अंदर नोट्स लो, मैं जो बोल रही हूँ सुनो और जा करके टाइप करके सबको उत्तर दे दो। तो रोज का ये धंधा दादी जानकी के साथ भी ऐसा रहा कि 5, 10, 15, 20 पत्र रोज कह देती थी ऐसा उत्तर दे दो। तो वो पत्र के उत्तर देने की सेवा तो हमारे दीदी के बाद दादी ने मुझे ही दी। पूरे यज्ञ के अंदर जितने हिंदी में पत्र आते हैं, पहले मुन्नी बहन मोहिनी बहन देती थी, लेकिन बाद में दादी ने कहा नहीं तुम ही सब संभालो। तो पत्रों के उत्तर देने की सेवा अभी तक भी चलती है, मुरली की है, पत्र पुष्प की है। और इसके साथ साथ एक कल मैं आपको बताऊंगा, हमारा एक बहुत अच्छा भारत के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, शाश्वत योगी खेती किसानों के लिए, और उसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। योग के प्रयोग वनस्पति पर, पेड़ पौधों पर, खेती पर कैसे किया जाए और उसके द्वारा उसकी क्या गुणवत्ता, क्या पौष्टिकता बढ़ती है, कितनी अच्छी पैदावार होती है, हमारे पास उसके साइंटिफिक रिकॉर्ड आ गए हैं प्रूफ सहित। तो इसलिए ये बहुत फास्ट गति से सेवा चल रही भारत के अंदर। अभी हमारे 7 अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं जो मैं छोड़ के आया हूँ, उद्घाटन में मुझे जाना था, मैंने कहा मैं विदेश जा रहा हूँ। 7 अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, नवंबर से 33 अभियान पूरे महाराष्ट्र में चलेंगे, पूरे महाराष्ट्र, एक भी डिस्ट्रिक्ट, एक भी तहसील, एक भी स्थान नहीं छोड़ना है। सब किसान है, 70% खेती पर निर्भर है भारत। तो उन किसानों को वर्तमान जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा वो है अनाज खान पान की, कैंसर जैसी भयानक बीमारी इस भोजन से पैदा हो रही है, और हमारी कोई भी फर्टिलाइजर वाली चीज विदेश के अंदर ली नहीं जा रही, इसलिए हमारे मोदी जी को बहुत संकल्प है कि हमारा भारत देश फिर से ऑर्गेनिक की तरफ झुके। तो सरकार भी हमें सहयोग दे रही है, उनका भी ये लक्ष्य है, और हमारा ये ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक प्लस योगिक है, योग के अच्छे वाइब्रेशन। किसान जितना चरित्रवान बनेगा, जितनी उसकी भावनाएं अच्छी होंगी, उसके विचारों के आधार से वनस्पति खेती अच्छी होगी, ये हम प्रयोग कराते हैं। तो कल इसके डिटेल सुना देंगे, अभी 8:45 होने वाला है। ओम शांति।
सबसे प्यारा मीत ये मन को भा गया।